मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 11 अगस्त 2016 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। और आप सबके साथ ही स्वागत है चार उन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं दीपेश छेत्री, आप भोपाल से हैं, अनिरुद्ध शिवराज पवार, नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं, प्रदीप रत्नानी, आप भी भोपाल से हैं, और अभिषेक मिश्रा, आप फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो दीपेश, अनिरुद्ध, प्रदीप और अभिषेक, आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके बाद मैं आप सब की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बधाई देता हूं गणपत सिंह डावर को, जिन्होंने एक ईमेल से सूचित किया है कि अभी एमपीपीएससी 2012 के फाइनल रिजल्ट आए हैं और उसमें उनका सिलेक्शन नायब तहसीलदार के लिए हुआ है और इसका श्रेय उन्होंने डेली ऑडियो गाइडेंस को भी दिया है। तो गणपत, हम सब की ओर से इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां और हम सब की ओर से जीवन की बेहतरी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। मित्रों, अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से में और कल मैंने दो संस्मरण जैसे या सच्ची कहानियां, संस्मरण तो नहीं कहना चाहिए, सच्ची कहानियां आपको सुनाई थी। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित थी और दूसरी आनंद बख्शी जी से संबंधित थी। मुझे खुशी है कि उसके बारे में आप लोगों ने तुरंत अपनी प्रतिक्रियाएं दी और उन दोनों कहानियों को न केवल पसंद ही किया बल्कि उससे सीखा भी। फ्रेंड्स, मुझे सच में ऐसा लगता है कि आप लोगों के दिल और दिमाग में पता नहीं किस तरह की धारणाएं बनी होंगी, लेकिन जो वाकई में बड़े आदमी होते हैं, मैं बड़े आदमी होते हैं नहीं कह रहा हूं, जो वाकई में बड़े आदमी होते हैं, उनमें मैंने पाया है कि अपने बड़ेपन का बिल्कुल एहसास ही नहीं होता। मित्रों, कल तो मैंने जो दो कहानियां आपको सुनाई, सच्ची कहानियां, आप क्या कहें इसके लिए समझ में नहीं आता, सच्ची कहानियां जो सुनाई वो तो मेरी, मैंने भी कहीं पढ़ी थी, मुझे भी किसी ने बताई होगी, मैंने आप तक वो बात पहुंचा दी। मैं उसका न तो प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं न मेरा कोई अनुभव रहा है, लेकिन मित्रों, ये मेरा सौभाग्य था कि 88 से लेकर के 97 तक, लगभग 9.5 साल तक का अरसा जो मेरा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के साथ बीता, उसमें मुझे दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला, बहुत बड़े बड़े लोगों से, मित्रों जिन्होंने इतिहास बनाया है और जिनके नाम हम सब आज इतिहास में पढ़ते हैं। मैं खुश नसीब, मेरी खुश नसीबी थी कि मैंने न केवल उनको देखा ही, न केवल उन्हें महसूस ही किया बल्कि उनसे बातचीत भी की। मित्रों, मैंने उनके बड़ेपन को देखा है और सच पूछिए तो शंकर दयाल शर्मा जी से ही इस बड़ेपन के दर्शन की शुरुआत हो गई थी। मैं बड़ों के दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ेपन के दर्शन की बात कर रहा हूं। इसलिए मित्रों, मुझे ये बातें सच में बहुत अपील करती हैं और अब तो बहुत स्वाभाविक सी भी लगने लगी है। मुझे लगता है कि जो बड़ेपन की पहचान है वो यही है कि आप दूसरों को बड़े होने का एहसास करा सके, आपसे मिलने के बाद दूसरों को लगे कि वह बड़ा हो गया है, खुद बड़ा हो गया है क्योंकि वो किसी बड़े से मिलकर आया है। दोस्तों, ऐसे ही एक दो संस्मरण, मैं कुछ संस्मरण आपके साथ शेयर करता हूं। ये चूंकि मेरे, इसका मैं स्वयं भोगी हूं, मैंने खुद इसे देखा है, महसूस किया है, तो मैं इसे और भी ज्यादा ईमानदारी के साथ आपके सामने रख सकता हूं। दोस्तों, मुझे याद आ रहे हैं वाचस्लाव हावेल, ये चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति थे, ईयर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, है ना, ये इन बिटवीन 92 to 97 कभी उनकी बात कर रही होगी, क्योंकि ये मुझे मालूम है कि शंकर दयाल शर्मा जी वहां तब राष्ट्रपति की हैसियत से गए थे। और जो वाचस्लाव हावेल थे दोस्तों, उस समय जब राष्ट्रपति थे तो वो दुनिया के बहुत माने हुए लिटरेरी फिगर भी थे, बहुत माने हुए साहित्यकार थे, नाटककार थे, और उनका नाम मुझे लगता है एक बार तो कम से कम मुझे बहुत अच्छे से याद है कि नोबेल प्राइज के लिए भी प्रस्तावित हुआ था, हालांकि उन्हें नहीं मिल पाया, लेकिन नाम प्रस्तावित होना अपने आप में छोटी बात नहीं होती। मित्रों, जब हम लोग को अंतिम विदाई दे रहे थे उनके पैलेस से, जब हम लोग विदा हो रहे थे, हम लोग मतलब सारे के पूरे का पूरा जो लोग गए थे वहां विदा हो रहे थे, तो मैं देखकर आश्चर्यचकित था कि दरवाजे पर, गेट पर कह लीजिए, बाहर अपने पैलेस के बिल्कुल बाहर, उस तरह का उनके लॉन नहीं था जैसा अपने यहां अक्सर होता है ना, कि पहले पोर्च होता है, उसके बाद बाहर लॉन, बहुत बड़ा सा लॉन होता है और वहां एक गेट होता है। उनके पैलेस के साथ ऐसा नहीं था, उनका पैलेस बिल्कुल सड़क के बिल्कुल किनारे ही, जिस तरह से फ्लैट्स वगैरह होते हैं ना, उसी तरह से था, जैसे कि आपको 10 डाउनिंग स्ट्रीट मिलेगा अगर आप वहां के प्रधानमंत्री के निवास को देखेंगे तो वो उसकी भी बनावट लगभग लगभग वही है। तो मित्रों, वो खड़े हुए बाहर आए, अपने दरवाजे पर खड़े हुए और सभी को व्यक्तिगत रूप से उन्होंने विदाई दी। सभी का मतलब ये तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जो प्रतिनिधिमंडल जो लोग जाते हैं वो लगभग 100 लोगों के करीब होते हैं, लेकिन वे लोग जो उनके पैलेस में उस समय मौजूद थे, जिसमें राष्ट्रपति जी वो स्वयं थे, बहुत से हमारे जो मिनिस्टर, जो प्रतिनिधिमंडल जाता है, मिनिस्टर्स एंड एमपी वे थे, और ऑफिशियल्स, जो कुछ ऑफिशियल्स होते हैं वो वहां मौजूद थे, उन्हें व्यक्तिगत रूप से उन्होंने विदा किया। और कैसे विदा किया, हाथ हिला करके, थोक के भाव नहीं, एक एक व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने विदा किया। मित्रों, दुनिया का राष्ट्रपति हम जैसे लोगों को, जिनकी कोई उम्र नहीं है, सच पूछे जिनकी कोई हैसियत नहीं है, उनके सामने क्या हैसियत है, कुछ भी हैसियत नहीं है, नहीं के बराबर, हम तो भीड़ के एक हिस्से मात्र थे, उन तक के कंधों पर हाथ रखकर उन्होंने विदाई दी। मित्रों, इसकी क्या जरूरत थी, वो गेट पर खड़े रहते, सब जा ही रहे थे, हाथ हिला देते, थैंक यू वेरी मच, वेलकम, कम अगेन, इस तरह से करके बात खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये जो टच है, उनका जो स्पर्श है, आपको क्या लगता है क्या सामान्य स्पर्श है? मित्रों, मैं आज आपसे जो उससे अपने संस्मरण को जो शेयर कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं, उस स्पर्श के ही अनुभव को ही तो आप तक पहुंचा रहा हूं, उस स्पर्श ने ही तो सब कुछ बदल दिया। अदरवाइज तो औपचारिक रूप से तो विदाई लोग देते ही देते हैं, क्योंकि हम तो उनके गेस्ट थे। तो मित्रों, जो रिलेशनशिप में जो एक फॉर्मेलिटी को खत्म करके जो अनौपचारिक एक्सटेंशन होता है, दैट मेक्स द रिलेशनशिप, वो आपके परिचय को संबंधों में बदल देती है, वो आपके कॉन्टेक्ट को रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर देती है, जब हम औपचारिक साथ से ऊपर उठकर उसे अनौपचारिक स्तर पर ले जाते हैं। और ये अनजाने में ही होना चाहिए और अनजाने में ही होता है, अगर हमारे चेतना में, हमारे अवचेतन मन में, हमारे व्यवहार में वो चीज मौजूद है तो अनजाने में होता है, ये कोई जानबूझकर नहीं किया जाता। मित्रों, ऐसा होता है और ये बहुत बड़ी चीज होती है, और मुझे लगता है कि यही तो सही मायने में मनुष्यता है। कभी कभी लोगों को लगता होगा, मतलब हो सकता है मैं यहां गलत हूं, मैं स्वीकार करता हूं, कभी कभी लोगों को लगता होगा कि चूंकि ये लोग बहुत बड़े हो गए हैं इसलिए ऐसा हो गए हैं, और मुझे इसके बिल्कुल उल्टा लगता है दोस्तों, ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, मुझे बिल्कुल इसके उल्टा लगता है, और मुझे ये लगता है कि क्योंकि ये लोग ऐसे थे इसलिए ये लोग बड़े हो गए हैं, अदरवाइज कोई चारा नहीं है। केवल ज्ञान के दम पर, केवल परिश्रम के दम पर, केवल चमचागिरी के दम पर, केवल खुशामद के दम पर, जोड़ तोड़ के दम पर कोई कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, और अगर पहुंच भी जाएगा तो उस ऊंचाई तक कितने दिनों तक टिका रह सकता है, उस ऊंचाई पर नहीं टिका रहेगा, धड़ाम हो जाएगा। और दोस्तों, ये सब ऐसी पर्सनालिटी मैं आपको बता रहा हूं कि जिनके नीचे से आप कुर्सी हटा लीजिए, ये गिरेंगे नहीं, ये कुर्सी की वजह से इनकी महिमा नहीं है, सच पूछे तो जिस कुर्सी पर ये बैठ जाते हैं वो कुर्सी महिमा मंडित हो जाती है, ये कुर्सी के मोहताज नहीं है, हर कुर्सियां ऐसे लोगों के मोहताज हुआ करती हैं। दोस्तों ये मैंने वाचस्लाव हावेलिक जो पॉलिटिशियन और लिटरेरी फिगर थे मैंने उनकी बात बताई। अब मैं एक छोटी सी बात आपको अपने एक भारतीय कलाकार की बता रहा हूं। मित्रों ये हमारे सरोद वादक हैं अमजद अली खान साहब। कभी आप अमजद अली खान साहब से मिलिए, एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है हिंदुस्तान की, दुनिया की बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। आप कभी उनसे मिलेंगे तो बड़ा आपको बड़ा विचित्र किस्म का अनुभव होगा। अगर आप उस अनुभव के स्तर को पा सकेंगे तो, मतलब आप अपने को इतना संवेदनशील बना सकेंगे तो, आपका अगर रिसीवर उतना करेक्ट और सेंसिटिव होगा तो, उनके चेहरे पर देखिए आपको एक विचित्र किस्म की शांति, विचित्र जानबूझ करके मैं कह रहा हूं, या कह लीजिए अद्भुत किस्म की शांति दिखाई देगी। उनकी आवाज सुनिए तो अलग किस्म की मधुरता और एक इत्मीनान सुनाई देगा। सबसे बड़ी बात है कि उनकी आवाज में इत्मीनान आपको सुनाई देगा, कहीं तलखी नहीं दिखाई देगी, सुनाई देगी, झलकेगी नहीं, और न ही कहीं जल्दबाजी दिखाई देगी। जबकि वो गायक नहीं है, वो तो म्यूजिशियन है, उनकी ये सारी चीजें झलकनी चाहिए उनके तारों के झनकार में, लेकिन उनके गले की आवाज में भी वो चीजें झलकती हैं। एक बार हुआ ये मित्रों कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, दिल्ली में बहुत ही प्रसिद्ध जगह है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, वहां उनके जो दो बेटे हैं, नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैं नाम अक्सर गड़बड़ कर जाता हूं, तो उनको एक तरह से लॉन्च करने की बात थी। वो भी गायकी में है या वादन में है, कुछ ऐसा है। तो उनका कोई कैसेट आया था और वो कैसेट लॉन्च होना था, तो वो प्रोग्राम था, डे टाइम में ही प्रोग्राम था लंच से पहले, और उन्होंने कुछ लोगों को आमंत्रित किया था। तो मैं और मैडम प्रीति अग्रवाल वहां गए थे, प्रोग्राम हुआ, बड़े शालीन तरीके से प्रोग्राम हुआ, कोई वैसे तड़क भड़क वाली बात नहीं थी। और इसके बाद लंच शुरू हुआ, तो मित्रों जब लंच शुरू हुआ तो सभी अपना अपना लंच लेने लगे। तो मैं देख रहा था, हम लोग देख रहे थे कि जो अमजद अली साहब हैं और उनकी जो पत्नी, जो खुद बहुत बड़ी गायिका है, बहुत बड़ी गायिका है, वो शायद असम से हैं या मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ी गायिका है, वो घूम घूम कर मेहमानों से पूछ रहे थे। और जो सबसे बड़ी बात है जो मैं यहां स्पेशली जो मेंशन करना चाहता हूं वो ये कि उनकी पत्नी जब मेहमान अपनी प्लेट खाली कर चुके होते थे, जब वो देखती थी कि अच्छा उनका भोजन कंप्लीट हो गया, उनका लंच कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है, वो खुद जाती थी और उनकी वो जूठी प्लेट अपने हाथ से लेकर के और डस्टबिन में रख डालती थी, जो वहां डब्बा सा रखा रहता है जिसमें जूठी प्लेट रखनी होती है। मतलब वो मौका नहीं देती थी उस व्यक्ति को कि वो खुद अपनी प्लेट जाए और उस जगह पर रख दे, वो अपने हाथ से वो लेती थी और उसे रखती थी। मित्रों ये सब क्या चीजें हैं? मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हम लगातार अपने को परिष्कृत भी करते चले जाते हैं। जैसे यदि आप किसी लोहे को मांजते न रहिए या किसी बर्तन को मांजते न रहिए तो ऊपर उसकी कीट जमती चली जाएगी, उसकी चमक गायब हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके माध्यम से हम भी लगातार अपने को मांजते रहते हैं ताकि उसके ऊपर कोई ईगो उगो जैसी कोई कीट जमा न होनी पाए, क्योंकि जैसे ही ईगो की कीट जमा होगी उस बर्तन की, उस धातु की चमक तो चली जाएगी, चाहे फिर वो कुछ भी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो। तो मुझे लगता है कि ये सब शायद यही करते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा कि जो सुधा मूर्ति जी हैं, सुधा मूर्ति छोटा नाम नहीं है, आप जानते होंगे, नारायण मूर्ति की पत्नी है। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की शायद वो पहली इंजीनियर थी, महिला इंजीनियर थी, और जो टाटा में जिन्होंने पहली बार दावेदारी के साथ अपनी नौकरी हासिल की, उनकी अपनी एक अलग कहानी है और बड़ी खूबसूरत कहानी है, वो मैं कभी आपको बाद में सुनाऊंगा अगर याद रही मुझे तो। छोटा नाम नहीं है सुधा मूर्ति जी का, और वो अभी भी खासकर समाज सेवा में तो वो मतलब अद्भुत है। उन्होंने एक जगह कहीं लिखा था, मैंने पढ़ा, कि वो रोज सुबह 3-4 बजे उठती हैं और गुरुद्वारा जाती हैं और वहां उनका सबसे पहला काम होता है कि जो जूठे बर्तन हैं उनको मांजना। ये वो काम उन्होंने अपने लिए चुना है। अब सोच करके देखे कि सुधा मूर्ति जी ने ये काम क्यों चुना है, उनको इस काम की यही काम करना था, दूसरे बहुत से काम थे, बहुत बड़े काम थे, कर लेते। फिर मित्रों मुझे कभी कभी मैं सोचता हूं कि यार गांधी जी थे तो गांधी जी संडास साफ करने का काम क्यों करते थे, टॉयलेट साफ करेंगे वो। फिर मैं सोचता हूं कि इतना देश का इतना बड़ा नेता, पहले मैं इस रूप में सोचता था जब मैच्योरिटी नहीं थी, और पता लगा कि उनके आश्रम में आकर के और नेहरू जी और मालवीय जी और सरदार पटेल और ये सब बड़े बड़े लीडर्स इंतजार कर रहे हैं कि गांधी जी कब आएं और उनसे राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की जाए और बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। और पता लगा कि गांधी जी कह रहे हैं कि रुको, उनको थोड़ा सा रुकने के लिए बोल दो, मैं अपनी बकरी को जरा सा चारा खिला लेता हूं। और वो बकरी को चारा खिलाने में लगे हुए हैं। देश का इतना बड़ा लीडर जिसके एक एक मिनट कीमती है, वो अपना समय बकरी को चारा खिलाने में लगा रहा है। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि ऐसा वो क्यों करते थे, ये क्या टाइम मैनेजमेंट है। लेकिन मित्रों, अब समझ में आता है कि जब तक आप खुद को मैनेज नहीं करेंगे, टाइम को क्या खाक मैनेज कर पाएंगे। और वो अपनी क्षमता बढ़ाते थे, इसके माध्यम से अपने को मांझते थे ताकि वो समय का सही उपयोग कर सके, अपनी वृद्धि करते थे, अपने को सुधारते थे, अपने को अपग्रेड करते थे, अपने को बढ़ाते थे। और तभी बढ़ाते 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 ये लोग बड़े हो जाते हैं। तो मित्रों, ये कुछ मैंने एक दो संस्मरण और कुछ उससे जुड़ी बातें आप लोगों को सुनाई, जो कल के ही संस्मरणों के कंटिन्यूएशन में है। मित्रों, आप लोगों को पसंद आया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। मित्रों, कल के AIR न्यूज में भी कुछ खास बातें नहीं थी, सच पूछिए तो। कश्मीर का मुद्दा तो आप देख ही रहे हैं कि कुछ समय से लगातार चल रहा है। अब थोड़ा सा पहले कश्मीर पर जो हम खबरें सुनते थे और अब कश्मीर पर जो हम खबरें सुन रहे हैं, उसमें अब आपको एक टर्न अराउंड ये दिखाई देगा कि पहले हम वहां होने वाली घटनाओं के बारे में सुनते थे, अब पिछले तीन दिनों से अब हम वहां होने वाली एक राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में सुन रहे हैं कि अब क्या किया जाए, किस तरह से इसका राजनीतिक समाधान हल किया जाए, बातचीत के लिए किस तरह से रास्ते खोले जाएं। आपने देखा कि इस पर राज्यसभा में बहुत बहस, इस पर डिस्कशन हुआ इस मुद्दे पर, और जो कि राष्ट्रीय मुद्दा है और बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर बातचीत हुई। और कुछ अब धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही हैं कि कल इस पर सर्वदलीय बैठक होगी। दोस्तों, आप लोग वैसे सामान्य रूप में अगर आप सोचेंगे तो लगेगा कि ठीक है, बैठक बैठक तो होती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। जो सर्वदलीय बैठक होती है, याद रखिए, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सर्वदलीय बैठक सबसे महत्वपूर्ण बैठक है। सच पूछे तो यही लोकतंत्र की कार्यप्रणाली है और यही लोकतंत्र की आत्मा है। सर्वदलीय बैठक का मतलब भी है कि इस मुद्दे पर आइए हम सब मिलकर बातचीत करें, भले ही हम कितने भी विरोधी विचारों के क्यों न हों। देखिए, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, एक दूसरे के मामले में बहुत से मुद्दों पर वो एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, अंततः राष्ट्रीय हित तो अंतिम उद्देश्य है ही, हां उस उद्देश्य को पाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, देश के विकास के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल तो सबकी एक ही है। तो आइए, सब अलग अलग विचारों के ही लोग बैठे, कोई बात नहीं, और उसमें से कोई सर्वसम्मति हल निकाला जाए ताकि मिलकर हम इसको सॉल्व कर सकें। और एक बात और भी होती है मित्रों, कि जब कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री कि सारी राजनीतिक पार्टियां किसी एक पर्टिकुलर इश्यू पर मिलकर निर्णय लेती हैं, और तो दुनिया को एक बहुत ही जबरदस्त और बड़ा स्ट्रांग मैसेज जाता है, मैसेज जाता है कि इस मुद्दे पर उस देश में कोई मतभेद नहीं है। और याद रखिए कि राजनीतिक दल के जो मेंबर होंगे वो जाकर के उस बैठक में भाग लेंगे, इसका मतलब है कि पूरा हिंदुस्तान उसमें भाग ले रहा है। मतलब डेमोक्रेसी को आपको इस तरीके से देखना चाहिए, है ना, राजनीतिक पार्टियों की निगाह से मत देखिए। राजनीतिक पार्टियां तो इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे आपको अगर किसी गाड़ी का एक नट खोलना है तो नट को खोलने के लिए आप अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर सकते हैं, पलास का भी उपयोग कर सकते हैं, रिंच का भी उपयोग कर सकते हैं, और अगर भारत की जो जुगाड़ू परंपरा है तो करछुल, एक आप क्या कहते हैं, कुछ भी का उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो ये जो चीजें हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली, अगर हम उस लैंग्वेज में बात करें तो, लेकिन उद्देश्य राष्ट्रहित ही होता है। तो यहां मैंने थोड़ी सी बात आपको इसके माध्यम से बताई है कि डेमोक्रेसी के बारे में आपका जो होराइजन है वो थोड़ा सा व्यापक हो सके, इसको केवल आप राजनीतिक चश्मे से ऊपर उठकर देखने और समझने की कोशिश करना शुरू कर दें। मित्रों, देखिए, हमारे गृहमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कर दिया है जो आपका स्टैंड होना चाहिए, है ना। पाकिस्तान, ये जो कश्मीर की जो समस्या है, इस पर भारत का क्या नेशनल स्टैंड है, और यही नेशनल स्टैंड आपके सिविल सर्विस का भी स्टैंड होना चाहिए जब आप इस पर अपना कोई भी मत निर्धारित करें। पहली बात कि जो कश्मीर भारत का हिस्सा है, ये अनडिस्प्यूटेड है, अविवादित है, इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। गृहमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि इसका विधिवत तरीके से भारत में विलय हुआ है। तो अगर कोई बाहरी शक्ति या दूसरा देश इसको विवादित बना करके और संकट पैदा करना चाहे तो वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी प्रॉब्लम इसके विवाद को सुलझाना नहीं है कश्मीर के, हमारी प्रॉब्लम कश्मीर में जो आतंकवादी समस्या है इसको सुलझाना है। तो ये आपकी दृष्टि बिल्कुल साफ होनी चाहिए। तो फिर हम पाकिस्तान से बातचीत के बारे में क्यों कहते हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं? तो मित्रों, वह है पाक अधिकृत कश्मीर। गृहमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि हां, उस पर बात की जा सकती है और उस पर बात करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। तो दोस्तों, इस बारे में जो भी आप अपने निर्णय लें, आपका जो निर्णय है वो बिल्कुल इसी फ्रेम में होना चाहिए। अगर आप इससे इधर उधर कुछ भी अपने तरीके से निर्णय लेंगे, अपना मत निश्चित करेंगे, तो ये मान करके चलिए कि वो हमारे राष्ट्रीय मत या राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं होगा। तो उसके साथ कुछ भी, आपके उस मत की मार्किंग कुछ भी हो सकती है, कहना मुश्किल है, लेकिन संदेह जरूर किया जा सकता है। दूसरी जो खबर थी दोस्तों, उसके बारे में कल हम लोगों ने बात की है कि तमिलनाडु का जो कुडनकुलम जो एटॉमिक एनर्जी का जो संयंत्र है, उसका कल राष्ट्र, उसकी पहली इकाई राष्ट्र को समर्पित कर दी गई है। इस पर दो तीन चीजें मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। कल कुछ तो मैंने आपको बताया था कि रशिया के सहयोग से बना है, रशिया यहां लगा रहा है। कुल चार इकाइयां हैं जिसमें एक कल राष्ट्र को समर्पित की गई है। हर इकाई की जो क्षमता है वो 1000 मेगावाट की है, 1000 मेगावाट, यानी कि ये जो पूरा का पूरा संयंत्र है 4000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा जब फुल फ्लेज्ड में चालू हो जाएगा। अभी जो हमारी पूरी बिजली, हमारे देश का जो विद्युत उत्पादन है, जो टोटल विद्युत उत्पादन है, उसमें जो एटॉमिक एनर्जी से जो विद्युत हमें मिल रही है वो है 5580 मेगावाट, 5580 मेगावाट। मित्रों, मैं धीरे धीरे जानबूझकर बोल रहा हूं कि ये कुछ ऐसे आंकड़े होते हैं, बहुत ही बेसिक आंकड़े होते हैं, जिन्हें आप कह लीजिए कि आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए, ये इनके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपके प्री में तो हो सकता काम नहीं आएंगे, मैं जानता हूं, लेकिन मेंस में बहुत काम आएंगे, है ना। अगर आपके दिमाग में कुछ बहुत बेसिक आंकड़े हो जाए तो मेंस में अच्छे नंबर लाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब हो जाती है जब बहुत सारे आंकड़े आप अपने दिमाग में इकट्ठे कर लेते हैं, फिर या तो उसमें भ्रमित हो जाते हैं या फिर अपने उत्तर में इन आंकड़ों को ही उतारते चले जाते हैं, तो उसमें गड़बड़ी होती है। तो ये बहुत बेसिक आंकड़ा है और बट नेचुरल है कि अब उसकी जो क्षमता है वो 6580 हो जाएगी, 1000 मेगावाट ये ऐड हो जाएगा। दोस्तों, आपको मालूम है कि भारत ने पेरिस कन्वेंशन में कुछ वायदे किए हैं कि वो 2022 तक ईयर देख लीजिएगा कि अपना जो ग्रीन एनर्जी का जो कंपोनेंट है वो बहुत बढ़ा देगा, और भारत ने कहा है कि वो टारगेट रखा है आने वाले 2022 तक कि वो 175,000 मेगावाट केवल कन्वेंशनल सिस्टम से, जिसको अक्षय ऊर्जा कह लीजिए या ग्रीन एनर्जी, अपने यहां पैदा करेगा। बहुत बहुत बड़ी चुनौती है मित्रों, 175,000 मेगावाट। तो डेफिनेटली उस दिशा में उठाया गया ये कदम है, तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर के, अगर आपने स्टेटमेंट पर ध्यान दिया हो तो उन्होंने इसे कहा है कि ग्रीन एनर्जी के फील्ड में ये एक कदम है। तो मित्रों, ये कुडनकुलम से संबंधित दूसरी खबर थी न्यूज में, और कुछ विशेष बात मुझे अभी सुनाई नहीं दी। अब मैं आता हूं मित्रों आज के न्यूज़पेपर पर। दोस्तों, न्यूज़पेपर में कुछ खबरें हैं, जैसे एक दुर्भाग्यजनक खबर, आप अरुणाचल के जो कुछ समय पहले ही जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी मृत्यु की खबर आपने पढ़ी। आत्महत्या है क्या है, अब इस पर जांच होगी तो पता चलेगी। तो हम सब उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो बहुत ही कम उम्र के थे और 5 बार विधानसभा चुनाव वो जीत चुके थे, और अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पिछड़ा हुआ एरिया था उसमें से इतनी अच्छी लीडरशिप उभर कर आई थी, तो भविष्य की बहुत सी अच्छी संभावनाएं उनमें थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि वो नहीं रहे तो हम सब उनकी आत्मा के को के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनके परिवारजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे, यह भी ईश्वर से मांगते हैं। दूसरी जो खबर जो मुझे न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिली मित्रों, वो मैं अब आपके सामने रखता हूँ, वो है तेजस को लेकर। आपने देखा कि तेजस विमान जो हमारी जो सेना है उसका एक अत्यधिक लड़ाकू विमान है तेजस, है ना, वो अब सेना में शामिल किया गया। उसका मतलब अभी वो चल रहा है और भोपाल एयरपोर्ट पर वो कुछ देर के लिए रुका था, इसलिए भोपाल के अखबारों में उसे फ्रंट पेज स्थान मिला है और काफी डिटेल में चीजें छपी हैं। तो तेजस के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों यहां मैं एक बात आपको इसी संदर्भ में और बता दूं कि अभी आपके प्री के एग्जाम क्लियर हो गए हैं, अभी हो गए हैं प्री के एग्जाम, अब दिसंबर में मेंस के होंगे। अभी जो आपका प्री का जो क्वेश्चन पेपर है उसे मैं पढ़ रहा हूं देख रहा हूं, तो वो तो मैं कर चुका हूं, लेकिन अब उसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। इसके आधार पर एक अपील मेरी आप सबसे है, रिक्वेस्ट आप सबसे है, अधिक वक्त न लगाएं, बस 1-2-3 दिन के अंदर ही आप इस काम को कर लें। खासकर ये उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी ये अपील है जो इस बार प्री एग्जाम में बैठे हैं, जो तैयारी करके बैठे हैं, है ना, यूं ही बैठ गए वो भी इसमें ज्यादा मददगार नहीं होंगे, जो नहीं बैठ पाए वो तो मददगार होंगे ही नहीं। खासकर वे स्टूडेंट जो मेरे डेली ऑडियो गाइडेंस को सुन रहे हैं, पहली बात गंभीरता से सुन रहे हैं, एटलीस्ट 6 मंथ से तो सुन ही रहे हैं, कम से कम 6 महीने से तो सुन ही रहे हैं, और दूसरी बात ये उनकी एलिजिबिलिटी है कह लीजिए, दूसरी बात जिन्होंने अपने लेवल पर भी सिविल सर्विस की तैयारी अच्छे से की थी, प्री की तैयारी अच्छे से की थी और इसके बाद वो एग्जामिनेशन में बैठे, तो मैं ये 3 अनुभव को मिला करके उनसे एक चीज की डिमांड कर रहा हूं कि वो मुझे ये बताएं कि जो डेली ऑडियो गाइडेंस जो अभी हम दे रहे हैं इसमें वो किस तरीके के परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। देखिए जब मैं परिवर्तन की बात कहता हूं तो कोई चीज खत्म करने की बात नहीं होती है, उसके रूप को कैसे बदला जाए, उसमें क्या चीजें ऐड की जाएं, क्या चीजें निकाली जा सकती हैं, क्या किया जा सकता है, और मैं चाहूंगा कि इसको आप पॉइंट में मुझे दें, है ना, डिस्क्रिप्टिव में नहीं कि आप ऐसे जैसा लिख करके दे दें, बुलेट पॉइंट में मुझे देंगे तो, क्योंकि बहुत से मेल आते हैं दोस्तों, एक सीमा होती है आप समझते हैं, अगर आप बुलेट पॉइंट में देंगे तो मुझे उसे ना एकदम पकड़ने में समझने में आसानी होगी, तो प्लीज इतनी मदद करें, अगर आप मेरी इतनी मदद करेंगे हम लोगों की तो डेफिनेटली फिर हम लोग भी आपकी ज्यादा और अच्छे से मदद करने की स्थिति में होंगे। तो मित्रों अब मैं आता हूं आज के न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। आज कुछ न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स बहुत अच्छी हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। एक क्लिपिंग्स मित्रों दैनिक भास्कर की है जिसमें देवेंद्र शर्मा जी का लेख छपा है कृषि को लेकर के। आप जानते हैं कि देवेंद्र शर्मा जी कृषि विशेषज्ञ हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, उसमें तथ्य होते हैं, तार्किकता होती है, तो इसको इस लेख को जब आप पढ़ेंगे तो आपको खासकर जो वैश्वीकरण, जो खासकर उदारीकरण के बाद जो कृषि की स्थिति हुई है उसका जायजा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये पता लग जाएगा कि इसके बाद पिछले 25 सालों के दौरान जो नीतियां बन रही हैं, भले उसका संबंध डायरेक्ट कृषि से न हो, तो किस तरह से वो नीतियां मूलतः कृषि विकास के विरोध में काम कर रही हैं। वास्तव में एग्रीकल्चर फील्ड का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, और इसमें इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त सच्चाई दी थी कि किस प्रकार से एक पहले से ही इस बात, जो विश्व बैंक था, विश्व बैंक ने एक अपनी बात कही थी भारत से कि वो जल्दी से जल्दी अपने किसानों को खेती से मुक्त करके शहरों में शिफ्ट करें। उसका कहना यह था कि जो भारत के किसान हैं वो खेती के कामों में लगे हुए हैं, वो बेसिकली अनुत्पादक काम कर रहे हैं, अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, जबकि जमीन इतनी महंगी चीज होती है वो उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो शहर में शिफ्ट हो जाएं। शहर में शिफ्ट होंगे तो क्या करेंगे, फैक्ट्री में काम करेंगे, निर्माण कार्यों में लगेंगे, मतलब मजदूर बन जाएंगे, और फिर उन जमीन का सही इस्तेमाल प्रोडक्टिव कामों के लिए किया जाए। ये जो तथ्य है, सच्चाई है, ये बहुत चौंकाने वाली सच्चाई है, और उसके उस फ्रेम में फिर देवेंद्र शर्मा जी ने अपने इस लेख को तैयार किया है कि किस तरीके से इस नीति का ही परिणाम है कि आज जितने भी किसान हैं उसमें से लगभग 48-50% किसान अपने इस व्यवसाय को छोड़ने को तैयार, उनको मौका मिले तो वो अपनी किसानी छोड़ देंगे। आत्महत्या की ओर किसान क्यों बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरीके की रही है, चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य की पॉलिसी रही हो, जिस तरह की, तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये बहुत ही तार्किक तरीके से, रियलिस्टिक तरीके से लिखा गया लेख है, तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा। मित्रों, इसी तरह का एक लेख टाइम्स ऑफ इंडिया में है, जो इसी तरह का तो नहीं कहना चाहिए, जो सिविल सर्विस को लेकर के है, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक सुधांशु रंजन का लेख छपा था, मैंने पढ़ा था वो तो मुझे बहुत ही सामान्य सा लेख लगा था, वो चीजें जो पहले से हैं वही उसमें लिखी गई थी। तो उनके रिएक्शन में दो आईएएस, यंग आईएएस ऑफिसर्स ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है टाइम्स ऑफ इंडिया में, ये लेख मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ये इसलिए जरूरी है इस लेख को आपके लिए पढ़ना, अगर पढ़ सकेंगे तो, चूंकि इंग्लिश में है, क्योंकि आप इसी सर्विस में जा रहे हैं तो इस सर्विस के क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, तो कुछ आपको उसकी जानकारी मिल पाएगी। और मित्रों, इसी के अतिरिक्त 3-4 और लेख हैं, वो आप देख लेंगे, मैं उनकी अलग से चर्चा नहीं कर रहा हूं। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले अपने साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। एक मेल मिला है दिवाकर झा का, मुजफ्फरपुर बिहार से। उन्होंने लिखा है कि वो डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में अब तक लगभग 80 लोगों को बता चुके हैं, यंग स्टूडेंट को बता चुके हैं, और उनको बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला है। तो दिवाकर, इस काम के लिए मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मित्रों, कुछ और दोस्तों के नाम मैं ले रहा हूं। साधना सिंह लखनऊ से, राजकुमार झुंझुनू राजस्थान से, सुप्रिय मणि शुक्ल मैनपुरी उत्तर प्रदेश से, भरत कुमार भिवानी हरियाणा से, अभिषेक भुवनेश्वर से, प्रीति बंसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से, अभिमन्यु कुमार गुप्ता कटिहार बिहार से, पूजा राजपूत प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, शुभांकर सरकार दिल्ली से, शिवम मिश्रा बरेली उत्तर प्रदेश से, ओपी जाट अजमेर राजस्थान से, और स्नेहा कुमारी भागलपुर बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार, हो सकता है तो भागलपुर झारखंड से भी हो, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही मैं आज के इस डेली आरडीओ को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।